आठवां अध्याय। अब जो बातें हम कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ी यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन परमेश्वर ने खड़ा किया था। क्योंकि हर एक महायाजक भेंटे और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इसके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो, और यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे कि जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। तंबू के बनाने में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता थी क्योंकि तंबू स्वर्ग का प्रतिरूप था। यदि कोई स्वर्ग को देखना चाहे तो उसे तंबू का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन करने दो। यीशु ने इस लौकिक मंदिर में प्रवेश नहीं किया जिसे हेरोदेस ने बनवाया था, उसने तो स्वर्ग प्रवेश किया जिसका यह लौकिक मंदिर मात्र प्रतिरूप था, ये मात्र स्वर्ग का प्रतिबिंब था। हमारे महायाजक ने स्वर्ग में प्रवेश किया जहां वह परमेश्वर के समक्ष हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। यदि हम पुराने नियम में तंबू के विषय में पढ़कर समझ लें कि वह कैसा था तो हम स्वर्ग और स्वर्गीय मर्म को जान लेंगे। पर उसको उनके सेवकाई बढ़कर मिली क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। निर्गमन 18 में व्यवस्था के संबंध में इसराइल के साथ परमेश्वर की वाचा को पढ़ने से ज्ञात होता है कि यह वाचा इसराइल की निष्ठा एवं आज्ञाकारिता पर निर्भर थी। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी है वे यही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी, और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बात मूसा ने यहोवा को सुनाई। यह एक सब प्रतिबंध या शर्तों पर आधारित वाचा थी। इसराइल ने प्रण तो किया परंतु उन्होंने परमेश्वर की वाचा को नहीं माना। यह प्रथम वाचा अमान्य हो गई क्योंकि इसराइल ने परमेश्वर के आदेशों का पालन नहीं किया। मसीह नई और उत्तम वाचा का मध्यस्थ है, इसमें प्रतिज्ञाएं भी उत्तम हैं। इसका कारण है कि यह मनुष्य की आज्ञाकारिता पर निर्भर होने की अपेक्षा परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर निर्भर है। यह मानव के कर्मों पर नहीं परंतु परमेश्वर के कार्य पर आधारित है, अतः यह स्थायी है। नया नियम पुराने नियम से श्रेष्ठ है क्योंकि यह उत्तम प्रतिज्ञाओं और मसीह यीशु में परमेश्वर के सिद्ध कार्य के निष्पादन पर आधारित है। यीशु ने एक ही बलिदान दिया है जो सदाकाल का है। यह प्रतिबंध मात्र एक ही है और वह है मसीह यीशु में विश्वास रखना। यह एक हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें परमेश्वर हमें आत्मा के जीवन द्वारा मसीह में जीवन प्रदान करते हुए मसीह के रूप में हमें ढाल देता है। यह कार्य न तो हम अपनी क्षमता में कर पाए थे और न ही व्यवस्था के द्वारा। वह जो कानून का पालन करता है उसके लिए संतरी की आवश्यकता नहीं होती। जब नियम मनुष्य के मन में व्याप्त हो तो उसे संविधान की क्या आवश्यकता, उसके लिए नियम में रहना बोझ नहीं वरन स्वभाव हो जाता है। 8:7-10 में लिखा है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे और मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। अर्थात परमेश्वर अपनी इच्छा को मनुष्य के जीवन से व्यक्त करेगा न कि व्यवस्था से। यहाँ आनंददायक अभ्यास होगा, इसमें मनुष्य शांत नहीं होगा वरन विश्राम पाएगा। यीशु ने कहा कि उसका जुआ आसान एवं बोझ हल्का है, और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को ये शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। यहाँ मनुष्य को श्रेय प्राप्त नहीं है, ये मनुष्य के जीवन मन एवं हृदय में परमेश्वर के कार्य है। वह दयावंत होकर मनुष्य के पापों को भुला चुका है। 13वीं आयत, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। ये पुरानी वाचा समाप्त हो गई। सन 70 में याजक तंत्र समाप्त हो गया। कट्टर यहूदी भी पुरानी वाचा को भुला चुके हैं क्योंकि न तो मंदिर रहा न याजक। कुछ प्रथाएं जैसे प्रार्थनाएं, सप्त, भोजन आदि वे अब भी मानते हैं। नई वाचा अनंत है जो उत्तम प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। इसका महायाजक न तो बदलता है न ही मृत्यु द्वारा समाप्त होता है। इस महायाजक ने एक बार बलि अर्पित की और वही सदाकाल की ठहरी और एक बार के बलिदान में ही समस्त मानव जाति के लिए अनंतकालीन उद्धार एवं परमेश्वर से मिलाप की स्थापना कर दी।